नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में आदिवासी लोगों की परंपराएं और जीवन जीने का तरीका राष्ट्र की संस्कृति को समृद्ध करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में आदिवासी कल्याण के लिए आवंटन 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब आदिवासी समाज का उत्थान होगा। आदि महोत्सव का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की जीवन संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना है। इस महोत्सव में 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 प्रदर्शन कलाकार और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल एक साथ आएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज तेजू में लोहित जिले के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल को प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए जिले में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित सभी डेटा के स्वचालन की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि जब ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो जाएंगे तो राज्य विकसित अरुणाचल को प्राप्त करेगा, जो विकसित भारत के सामूहिक दृष्टिकोण में योगदान देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए उन्होंने छात्रों को आवश्यक कौशल से लेस करने, उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने, विशेष रूप से जल विद्युत और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। इस बीच राज्य में तपेदिक उन्मूलन के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए और निश्चय मित्र के रूप में अपनी भूमिका में राज्यपाल ने लोहित जिले के 2 टीबी रोगियों को गोद लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ओरिया उत्सव के अवसर पर वांगचो समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दी है। श्री खांडू ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में लोंगडिंग में सेंट्रल ओरिया के स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी साझा की। ओरिया स्वर्ण जयंती केंद्रीय समारोह के अवसर पर श्री खांडू ने 1875 के एंग्लो वांगचो युद्ध पर एक प्रदर्शनी स्टॉल का अनावरण किया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक नीनू विद्रोह की 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नीनू विद्रोह वांगचो योद्धाओं की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो बहादुरी से उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए और बेजोड़ साहस के साथ अपनी भूमि की रक्षा की। इस उत्सव में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, सांसद तापिर गांव, बागवानी मंत्री गैब्रियल डी वांगसू भी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए स्वदेशी परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल तेजू में 55वें केंद्रीय तमिलनाडु उत्सव में भाग लेते हुए श्री मेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, बागवानी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के दीर्घकालिक मिशन पर जोर दिया, जो अरुणाचल प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता के स्तंभ के रूप में काम करते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 2 पुस्तकों सोखेप क्री द्वारा लिखित कमन लाई लिंग याई और कथेसी क्री द्वारा लिखित कुमटिबा का विमोचन किया और तेजू ब्लॉक के लिए कैल्सम कैलेंडर भी जारी किया, जिनमें से प्रत्येक मिश्मी समुदाय की भाषाएं और सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में योगदान देता है। रीवॉच मातृभाषा केंद्र ने कल चौखाम में 41वें शोपोंग यंग मनाओपोई समारोह के दौरान सिंफो फोक सॉन्ग्स नामक द्विभाषी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का आधिकारिक विमोचन शहरी विकास और भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की उपस्थिति में किया। डॉक्टर विल्होसिनो नेली द्वारा संकलित सिंफो फोक सॉन्ग सिंफो समुदाय की समृद्धि मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पुस्तक में अंग्रेजी अनुवाद के साथ साथ मूल सिंफो भाषा में प्रस्तुत पारंपरिक लोकगीतों का संग्रह है। इस पहल का उद्देश्य सिंफो भाषा की काव्यात्मक भविव्यक्तियों का दस्तावेजीकरण और सुरक्षा करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bakra. President Draupadi Murmu inaugurated the Adi Mahotsav 2025 in New Delhi today. Addressing the gathering, President Murmu said the traditions and the way of living of tribal people in the country enrich the culture of the nation. She said allocation for tribal welfare has increased threefold in this year's budget. She said the country will become developed only if the tribal societies are uplifted. Adi Mahotsav aims to celebrate and showcase the vibrant culture, heritage and economic potential of India's tribal communities. Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik reviewed the central and state government-sponsored programs, projects and schemes of Lohit District at Tezu today. The governor, who is on a two-day tour of the district, was briefed about the progress and challenges of the flagship programs. The governor emphasized the need for automation of all data related to yojanas being implemented in the district to augment analysis, monitoring and management. Additionally, the governor emphasized that when rural areas become viksit, the state will achieve viksit Arunachal, contributing to the collection vision of viksit Bharat. Citing the National Education Policy 2020, he highlighted its potential to equip students with essential skills, making them job-ready, particularly in sectors such as hydropower and infrastructure development. In the meantime, continuing his ongoing commitment to eradicate tuberculosis in the state and in his role as Nikshay Mitra, the governor adopted two TB patients from Lohit district. Chief Minister Pema Khandu has extended his greetings to the Wancho community on the occasion of Oriya Festival. Khandu, in a social media post today, shared his happiness on being a part of the Golden Jubilee celebrations of Central Oriya in Longding. May Almighty Jawan Zhang bless everyone with prosperity, good health and happiness, the CM said. On the occasion of the Oriya Golden Jubilee Central Celebration, Khandu unveiled an exhibition stall on the Anglo-Wancho War of 1875, marking the 150th anniversary of the historic Ninu Massacre revolt against British colonial rule. The Ninu Massacre remains a testament to the unyielding spirit of the Wancho warriors who bravely stood against oppression and defended their land with unmatched courage, Khandu said in his post. Deputy Chief Minister Chona Men, MP Tapir Gao, Minister for Horticulture Gabriel Wangsu, WCD Minister Dasang Lupul attended the celebrations. Deputy Chief Minister Chona Men said that Arunachal Pradesh government is committed to preserve and promote the indigenous traditions while strengthening the state's development vision. Attending the 55th Central Tam Ladu Festival at Tezu yesterday, Mr. Main emphasized the state's long-term mission for all-round development in sectors like education, healthcare, tourism, horticulture and agriculture, which serve as pillars for Arunachal Pradesh's progress and self-reliance. On the occasion, the Deputy CM released two books, Kaman Lai Ling Yai, authored by Ashoke Kri and Kumtiba by Kateshi Kree, and also released the Kalsum calendar for Tezu block, each contributing to the documentation and preservation of the Mishmi community's linguistic and cultural heritage. The Rewatch Center for Mother Languages released a bilingual book titled Sing for Folk Songs during the 41st Shapang Wang Manau Pois Central Celebration at Jokham yesterday. The book was officially released by Minister for Urban Development and Land Management Balu Raja in the presence of Deputy Chief Minister Chona Men. Compiled by Dr. Bilho Sino Nili, Sing Four Folk Songs is a significant effort in preserving the rich oral traditions of the Sing Four community. The book features a collection of traditional folk songs presented in the native Sing Four language alongside English traditions. This initiative aims to document and safeguard the poetic expressions of the Sing Four language, ensuring their continuity for future generations. The Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for Kamle, Lower Subansiri, Papumpare and Dibang Valley districts of Arunachal Pradesh. IMD has issued a warning of rainfall with thunderstorms and lightning at isolated locations over the next 24 hours. Isolated rainfall, snowfall are also forecasted at higher altitudes of Tawang, Upper Subansiri, Shiomi, Upper Siang and Dibang Valley districts. That's all in this news bulletin. Namaskar.